शांति उपस्थित श्री आत्मन संकल्प शक्ति कल रात्रि के प्रवचन में समर्पण की बात आपके सामने रखा था। संकल्प अनुकूलता का नाम नहीं है। हमने विचार किया, हमने निर्णय किया, व्यवहारिक बात, हमें एक अच्छा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मंत्री होना है, करोड़पति होना है, तो ऑप्शन डाउन आएंगे, सूरज निकलेगा, सूरज डूबेगा, डूबा हुआ सूरज फिर निकलेगा, अमावस आएगी, पूनम आएगी। संकल्प का एक बार जो मैंने निर्णय लिया स्वामी रामदेव के शब्दों में, एक बार आपने निर्णय लिया सारी दुनिया विरुद्ध हो जाए, सारी प्रकृति विरुद्ध हो जाए, सूरज चांद भी आकर कहें कि अपने निर्णय को बदलो, अपने संकल्प को बदलो, तो स्वामी रामदेव कहते हैं परेशानी आ सकती है, थोड़ी प्रतिकूलता भी आ सकती है, लेकिन एक दिन आप जबरदस्त सफलता में अपना जीवन देखेंगे। सफलता का मतलब क्या? अक्सर मैं लोगों के मुख से सुना, रोज मैं मंदिर जाता हूं, पाठ करता हूं, रोज आना 11 माला गायत्री के करता हूं, ये सब किस लिए है? 150 जब हम गुलाम रहे तो हमें बता दिया गया कि तुम्हारा काम भगवान करेंगे, लेकिन बड़े प्यार से कहता हूं, अवतार के रूप में जब भगवान आए तो उन्हें कर्म करना पड़ा, और हमारे अंदर एक कैसा संस्कार आ गया कि भगवान सब कुछ करेंगे। भगवान मदद करता है, नेचर मदद करती है, अस्तित्व मदद करता है, निर्णय आप कर लें। आपने निर्णय लिया कुछ भी, अभी गुरु मंत्र की बात बताऊं, हर साल गुरु पूनम पलो गुरु मंत्र लेते हैं, या विचार तो करो गुरु मंत्र का जाप हम कब करें, कहां करें, कैसे करें। मेरे प्रिय आत्मन, चाहे राम की बात हो, कृष्ण की बात हो, गुरु मंत्र की बात हो, आप हर हालत में ईश्वर की व्यवस्था में, कुदरत की व्यवस्था में आप श्वास लेते हैं, आप आनंद में हैं या कोई परेशानी है, आप सुखी हैं या झोपड़ी में हैं, लेकिन श्वास जब तक आप ले रहे हैं जीवित हैं। मेरे प्रिय आत्मन, हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा, श्वास आप सब जगह ले सकते हैं, श्वास हमारा जीवन है, आप चली जाए तो हम जिंदा रहेंगे, कान चला जाए तो भी जिंदा रहेंगे, आंख भी ठीक है, कान भी ठीक है, हाथ भी ठीक है, लेकिन अगर श्वास चले जाए तो सब बेकार। 100 साल के बाद जब हम इस दुनिया से जाते हैं, आप नगर सेठ हैं, पूरा नगर बोल रहा है राम राम सत्य है, लेकिन जो चार कंधों पे जा रहा नहीं बोल रहा है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि, जब तक श्वास है आप जिंदा, श्वास नहीं है तो चार कंधे पे ले जाएंगे। सभी लोग सीता राम 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 सत्य बोलेंगे, लेकिन मरा हुआ व्यक्ति नहीं बोलता। मनोवैज्ञानिकों ने हमारी बात को पकड़ा, जीते जी जो परमात्मा का नाम नहीं बोल रहा है वह भी जीते जी मर गया है, कोई जीवन नहीं है, कोई बात नहीं, मानसिक रूप से मर गया। और जो मर गया है उसके विषय में क्या कहना चाहूंगा, जीवित व्यक्तियों के लिए कहना है, अर्जुन ना मुझे भूल ना अपने कर्तव्य को, गांधी कर्तव्य आज से यही संकल्प शक्ति में कहना चाहूंगा, कुदरत को जो करना करे उसके नियम में मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। लेकिन इतना आपको बता दें, आप संकल्प कर लो सारा विश्व मेरे विरुद्ध चला जाए, लेकिन ना मैं भगवान को छोड़ूंगा और ना अपने कर्तव्य को छोड़ूंगा, एक दिन सारी दुनिया आपकी खुश हो जाएगी। किसी को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए नियम ना बदलिए, इस जगत में कोई खुश नहीं होगा। आप अपनी मर्यादा है, आप अपना जीवन है। एक लग्न ने संकल्प किया कि गुरु मेरे जोड़ना चाहते, उस समय रीति रिवाज के अनुसार वो सब चर्चा में करना नहीं चाहता। मूर्ति बनाई, यही मेरे गुरु हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं। एक सामने मूर्ति रखकर परेशानी पर परेशानी आई, लेकिन एक लफ्ज ने अपने विचार का त्याग नहीं किया और इतने प्रवीण हो गए। आप कहानी जानते हैं, पार्वती शंकर की प्राप्ति के लिए तपस्या करती है, कितने लोगों ने बहुत कुछ कहा, प्रतिकूलताएं भी आई, लेकिन अपने विचार का त्याग नहीं। आप जो भी बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक, एक अच्छा व्यक्ति, करोड़पति, डॉक्टर, जिन सबके लिए करता, आपने एक निर्णय लिया और किसी के कहने से बदल गए, संकल्प करती होता है कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने विचार को निर्णय को नहीं बदलू। समय ने हिजड़े कपड़ा पहनाया, अर्जुन ने खराब समय को भी किसके नाम से बिताया, जिसके हाथ में गांधी है उसे मृतक पर जाना पड़ा। तो मेरे प्रिय आत्मन, कोई समय ऐसा आ सकता है कि आप बलवान है, लेकिन कम से कम इतना तो आपसे कहूंगा, आप अर्जुन किसकी कहानी का विचार करते हैं, सीता राम का विचार करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो ताकत है, रहस्य है, उसको क्यों नहीं समझते? हे भगवान, तूने क्या किया? भगवान ने क्या किया? भगवान को मदद कर रहा है, वो तो एक अस्तित्व है। और विज्ञान भी कहता है अस्तित्व का अपना कोई संकल्प नहीं होता। ये आपके सामने नदी है, नदी का कोई संकल्प नहीं। आप बाथरूम में ले जाए, खेत में ले जाए, रसोड़े में ले जाए, आपके संकल्प के साथ नदी का पानी चलने के लिए तैयार है। भगवान ने हमें आपको इतना सुंदर जीवन दिया, इतना सुंदर हाथ दिया, ये निर्णय आपका है कि प्रणाम करें, आशीर्वाद लें कि किसी को हाथ दिखाएं। एक अस्तित्व है, इस अस्तित्व का निर्णय आपको करना। आप हाथ नहीं बना सकते, आप अस्तित्व को नहीं बना सकते, आप जमीन नहीं बना सकते, धरती नहीं बना सकते, लेकिन उसमें अपने विचार से जो लगाना चाहे लगाए। आप गेहूं लगाओगे तो आपको गेहूं भी मिलेगा, चना लगाओगे चना भी, आम का बगीचा लगाओगे तो आम का फल पाओगे, बावर लगाओगे बावर। निर्णय धरती का नहीं, यहां पथिक समाज बैठा हुआ, प्रोफेसर भी है, डॉक्टर है, मंत्री भी है, कमिश्नर भी है, धारासभ भी है, आगे बढ़ रहे समाज के आगे, सब तरह के लोग हैं। धरती नहीं गाती, अस्तित्व नहीं गाता, वो कहता है जो तू मुझे देगा मदद करके हजार गुना तुम्हें वापस कर। तो संकल्प शक्ति का जो विचार इस पूनम पर रखा गया उसके पीछे एक रहस्य है। अक्सर कई बार लोगों ने मुझसे कहा मैं तिरुपति बालाजी जाता हूँ, अच्छी बात है, सोमनाथ जाता हूँ, मक्का मदीने तक की बात आई, बाहर की आई, कहते मैं समर्थन करता हूं, लेकिन ये आपकी तैयारी है। आप रामायण पढ़ते हैं, जगत की व्यवस्था में देखिए शुभ और अशुभ, आप महाभारत पढ़ते हैं शुभ और अशुभ, पढ़े लिखे लोग मेरे पास आते हैं, स्वामी जी ऐसा क्यों ऐसा क्यों। जो पथिक समाज है बड़े प्यार से करता है, जो उसे पिक्चर सुनाने का पिक्चर देखते हो, जितना जबरदस्त हीरो होता है उतना ही जबरदस्त विलन होता है। हर पिक्चर में कम से कम एक तो विलन होगा, क्यों होता है, तभी पिक्चर चलेंगे। दो घंटे ढाई घंटे जो देखते हो, अगर बीच में विलन को मार डालूं तो हीरो तो जिंदा रहेगा, पिक्चर खत्म हो जाएगा। आप 100 साल जीना चाहते हो, मैं कहता हूं 500 बरस जियो, लेकिन जब तक जिम्मेदारी आपके पास है कोई न कोई अवरोध विरोध करता रहेगा। यह आप होगा, वो इसलिए करता है कि आप जागृत रहिए, चलिए आपके पिक्चर चले, आपको बुरा नहीं मानना, लेकिन उसी बात को नहीं समझ पाते। तो हमारा सारा सुख जहर में मिल जाता। इसने ऐसा क्यों कहा क्यों कहा क्यों कहा। अपने पर श्रद्धा और विश्वास का अर्थ क्या है, क्या अनुकूल काम होना। हम लोगों ने अर्थ यही लगा लिया, मैं भगवान की पूजा करता हूं तो जैसा मैं चाहूंगा भगवान करेंगे, मैं मंदिर जाता हूं ग्यारह माला करता हूं मैं जैसा चाहूं भगवान करें। तो विज्ञान और वेद के आधार पर मेरे प्रिय आत्मन एक अस्तित्व है जो न जन्म लेता है न मरता है, न उसका कोई आकार है न प्रकार है न कोई वजन है, लेकिन है। इस शब्द आप सुन रहे हैं लेकिन देख तो नहीं रहे हैं, आवाज आ रही है, उसका चित्र ले सकते हैं नहीं, स्पर्श करते हैं उसका चित्र बताइए। तो मेरे प्रिय आत्मन, लोग मुझसे पूछते हैं स्वामी जी भगवान का आकार क्या है, या विचार कीजिए आकाश का क्या आकार, वायु का क्या है। यहां कठिन समाज बैठा हुआ, जो शून्य है उसका रंग नीला होगा, लेकिन वास्तव में नीला रंग नहीं है। आकाश को शून्य माना गया और आपको नीला दिखाई पड़ता है, आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से वहां कुछ है। पानी गहरा होता है नीला दिखाई पड़ता, गहरा पानी नीला दिखाई पड़ता, वास्तव में नीला नहीं होता। आप देख तो रहे लेकिन समझते हैं उसका रंग नीला नहीं है। इसी तरह से अस्तित्व में हम शून्य हैं, हम यहां से बैठे हैं, पूरे भारत से करीब करीब लोग आए, पंजाब है, दिल्ली है, मुंबई है, हमारा गुजरात तो है ही, आसपास के सब। अभी आकार प्रकार में ये पंजाब के हैं, दिल्ली के हैं, ये हरियाणा के हैं, बॉम्बे के हैं, ये गुजराती हैं, ये मराठी हैं, कोई बाहर का होगा। लेकिन जब आप सो गए, आपको नींद आ गई, उस समय आपका आकार प्रकार क्या है? न कोई पंजाबी है, न कोई गुजराती है, न कोई गुरु है, न कोई शिष्य है, सब एक हो गए। हमारे जो ईसाई भाई हैं, ईसा मसीह ने भी कह दिया है, फादर एंड आर वन। हमारी बात को उन्होंने ढंग से कहा, हमारा पुत्र हमारे पास सोया है, हमारे पास है। लेकिन जब शून्य बने, विचारों से पड़े गए, यह तो वाक निवर्तन थे अपराध अनुसार, तो कौन गुरु कौन शिष्य? आज हम आप एक प्रकृति की व्यवस्था में, प्रगाढ़ निद्रा में, सुसुप्ति में शून्य बनते हैं, तो एक हो गए। जब जागेंगे, ठीक है, कोई गुरु है, कोई शिष्य है, कोई करोड़पति है, कोई मंत्री है, कोई दास है, लेकिन अंदर का जो अस्तित्व है, वो है और है। अब चाहे उसे आत्मा बोले, विराट रूप में परमात्मा बोले, स्वयं बोले, उसने स्वयं नहीं कहा कि मुझे ये कहो, ये तो समझने के लिए हमने और आपने। तो सफलता के पीछे रहस्य क्या है? एक बार मैंने निर्णय लिया, समर्थ रामदास का देखिए, कबीर का देखिए, शंकराचार्य जी देखिए, निम्बार्काचार्य जी हमारे संतों के देखिए, गुरुओं का देखिए, पंजाब के गुरुओं का। एक विचार किया कि मुझे ध्यान पर चलना, मुझे परमात्मा की गोद में बैठना है। रास्ते अलग अलग थे, साधनाएं अलग थी, चाहे महावीर की बात हो, भगवान बुद्ध की बात हो, पीर की बात हो, पैगंबर की हो, किसी की, आप किसी धर्म के हैं, लेकिन अपने उन गुरुओं को देखिए जिनके नाम से हम आप इज्जत ले रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, जी रहे हैं। महावीर का नाम लीजिए, भगवान बुद्ध का लीजिए, पैगंबर का लीजिए, शंकराचार्य जी, माधवाचार्य, बाढ़ का बाबा, चीतन जी, पंजाब के गुरु ने कहा, समस्ती में कहा, इन लोगों ने अपने कठिन जीवन को किस तरह से साधना के रूप में रूपांतरित किया। तो एक बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, श्रद्धा विश्वास से, संस्कार से जहां भी आप समर्पित हैं, समर्पण में अस्तित्व तो मदद करेगा, चाहे वो कृष्णा है कि राम है कि गुरु जी है, लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले एक आपकी शंका में जोर करना चाहूंगा। एक अधिक व्यक्ति आया, उनके प्रश्न का जब उत्तर दिया, आप कितनी भक्ति कीजिए, कितने प्रबल शक्तिमान बन जाइए, सिद्ध बन जाइए, कितने पद पर चलाए, लेकिन अगर कर्म गलत हो गया तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा। या विचार करो, आज मनोवैज्ञानिक भी हमारी बातों पर विचार कर रहे हैं, बड़े प्यार से कर रहे हैं। अपने भारत के समक्ष आपको देख के कर, अगर आप रामायण देखें तो कर्म से बहुत कुछ लोगों ने प्राप्त किया। लंकेश की बात कर, लेकिन एक गलत कर्म करने से सबका सब चला गया। महाभारत में आइए, द्रोणाचार्य जी हैं, भीष्म पितामह हैं, सपने मामा, मनोवैज्ञानिक क्या कह रहा है, कितनी शक्तियां द्रोणाचार्य जी में आई, पुत्र के मरण का समाचार सुनेंगे तभी उनकी मृत्यु होगी, अश्वत्थामा के पुत्र का, भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु, मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं प्रिय आत्मन, संभव है कि ये कल्पना हो, लेकिन कल्पना का आधार बिल्कुल सत्य है। हम कितने सिद्ध हो जाए, कितने बड़े पद पर आ जाए, कितनी भक्ति करें, कितनी शक्ति प्राप्त करें, लेकिन कर्म गलत होगा तो कोई भक्ति, कोई ज्ञान, कोई पद, कोई डिग्री हमें बचा सकती है, कोई नहीं। अब उनका एक प्रश्न था हमारे साधुओं पर, मैंने प्यार से पूछा था, जवाब तो देना मेरा काम है, आप मुझे नहीं पूछे, आपको जो पूछना प्यार से पूछो, जवाब दो, आपके मन की शंकाएं जानी चाहिए। स्वामी जी आप कर्म पर इतना जोर देते हो तो आपका साधु समाज क्या कर्म करता। मैंने कहा ठीक, मैंने कहा आपकी नौकरी अभी कब तक रहेगी, कहते अभी 7-8 साल रहे। मैंने कहा रिटायर होने के बाद आप आश्रम में आइए और रहिए, बड़े प्यार से पूछता हूँ कितनी पेंशन मिलेगी, कहते कम से कम 40,000 मिलेगी। अच्छा, 35 साल नौकरी करके आप आश्रम में आए और आपने एक व्यवस्था दी कि मेरी पेंशन मेरे नाम से मनीषानंद आश्रम में आनी चाहिए, वो महीने में आए, 2 महीने में 3 महीने उसकी बात अलग है, लेकिन व्यवस्था देना, आप आश्रम में 35 साल नौकरी करके आए सरकार आपको 40,000 रुपया पेंशन के तौर पर भेज रहे हैं। और आपको देखकर एक दूसरा चेला आया, कहे महाराज जी एक महीना आश्रम में रहने से इनको सरकार ने 40,000 दिया, मैं तो 3 साल से रह रहा हूँ, 300 रुपया भी सरकार ने भी नहीं दिया। विचार करो, आप लोग जानते हैं यहाँ गाड़ियां आई है, मैंने कहा मैंने किसी से मांगा, हम पिछले जन्म में हम आप सबकी बात करता केवल मैं संतों की बात नहीं, हम आप पिछले जन्म में इतना अच्छा कर्म कर चुके हैं कि जन्म में पेंशन ले रहे हैं, कर्म करने की कोई जरूरत नहीं ले। तो आपके सामने एक बात रखूं, ये आदमी काम नहीं करता बढ़ा चुकी है, ये आदमी कुछ नहीं, छोड़िए मैं आपकी बात करता, आप 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा करके आ जाइए, आ सकते किसी को नहीं मालूम, भले आपकी उम्र 35 साल की है, लेकिन आपने एक व्यवस्था दी उसका ब्याज हर महीने मुझे मनीषा मन आश्रम में मेरे नाम से मिलना चाहिए। लेकिन एक दूसरा आदमी है कि अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में 10 लाख का बैंक से कर्जा लिया, और शर्त यह है कि जब तक बैंक का कर्ज नहीं पूरा होगा आपके बच्चों की पगार आदि नहीं, दोनों मेरे पास रहते, लेकिन जब घर समझ में आएगा एक जमा करके आया है और एक उधार लिया है, पगार पूरी नहीं आ रही है, क्योंकि शर्त है कि जब तक वो पूरा नहीं होगा आधी पगार। तो आप किसी पर आक्षेप क्यों लगा रहे, स्वामी जी मैं जितना कर्म करता हूं कुछ नहीं मिलता, अरे कुछ नहीं करता आप उसके पीछे जब कर्म नहीं लगे। अभी मास्टर कमल सिंह ने तो मूर्ति के बाद 40 साल में जो मैंने तपस्या की है, तो मूर्ति पिछले जन्म में कितनी तपस्या की है कि मेरी 40 साल की कमाई उनको मिल गई, अब उसे जितना बढ़ाना चाहे बढ़ाए, जा विचार कीजिए। तो जब आपके मन में विचार आए, एक बड़ी सुंदर बात बताओ, पूरी वैज्ञानिक बात बताता, दूसरे का सुख, दूसरे की समृद्धि, दूसरे का विकास देखकर अगर आप दुखी होंगे तो आपके विकास में भी कोई सुखी होने वाला नहीं। मित्र के तौर में, पड़ोसी के तौर में, किसी तरह जिसने आपको दुख में मदद की है, अपने सुख में उसे नहीं भूलोगे तो कभी दुख आने वाला नहीं। अक्सर होता है कि दुख में जिसने मदद की हम सुख में भूल जाते हैं। हमारे संतों ने जब कहा कि दुख में सुंदर सब करे, सुख में करे न कोई, पहले तो जिन लोगों ने हम पर परोपकार किया वो परमात्मा को, चाहे वो डॉक्टर है, पड़ोसी है, इंजीनियर है, माता है, पिता है, मित्र है, कोई। हमारे संतों ने भी कहा कि समय पर जिसने आपकी मदद की आप आगे आए, तो स्वप्न में भी उनको मत बोलो। शक्ति प्राप्त करके जिन्होंने हमें दूध पिलाया, जिन्होंने हमारी परवरिश की, अगर हम उनका विरोध करेंगे तो जो आशीर्वाद मिलना चाहिए। आज विज्ञान भी कहता है आपके आशीर्वाद में, आपके शब्द में, शुभकामना में जबरदस्त ऊर्जा। रशियन वैज्ञानिकों ने बताया पेड़ पेड़ होता कैटलिस्ट होती है। आप पेड़ के नीचे बैठकर पेड़ की प्रार्थना करें, सबे भाव सुखना की बात करें, केवल 6 महीने पेड़ के नीचे आप बैठे शुभ भावना के साथ प्रार्थना के साथ, और आप देखेंगे कि 6 महीने के बाद वो पेड़ भी आपको देख करके प्रसन्न होता है। रशियन वैज्ञानिकों ने विज्ञान से सिद्ध कर दिया। वैसे साईं जगदीश चंद्र बोस ने पहले ही कहा था पेड़ में भी जीव है। तो जा विचार कीजिए मेरे प्रिय आत्मन, आपकी प्रसन्नता में आप तो सुखी हैं, लेकिन पेड़ पौधे भी आपके आनंद में भागीदार बनते हैं। तो आदमी क्यों नहीं भागीदार बने? पेड़ पौधे भी आपकी मदद करते हैं, लेकिन मन से देखना है। जिस विचार को हमने धारण किया, मैं महावीर को मानता हूं तो सबने महावीर देखो, मैं भगवान बुद्ध को मानता हूं तो सबने भगवान बुद्ध को देखो, मैं गुरु को मानता हूं सबने गुरु को देखो, पीर मानता हूं पीर देखो। मैं आपके विचारों में कुछ और नहीं लाना, लेकिन जहां हो उसे पूरी तरह स्वीकार कर, अनादर किसी का नहीं। अपने पिता का आदर करो लेकिन चाचा का अनादर नहीं। आप अपनी मां का आदर करें लेकिन मासी का अनादर नहीं। आप अपने गुरु का आदर करें लेकिन आप अपने गुरु के आदर में और किसी के गुरु का अपमान नहीं। आप अपने धर्म का आदर करें लेकिन और के धर्म का अनादर न करें। ये आपकी दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। रही बात व्यवहार की, पहले ऐसी दृष्टि अपने अंदर पैदा की, फिर व्यवहार में कोई कंस बनेगा रावण बनेगा। तो अभी बता दूं, हमारी बालिकाओं ने भी भांगड़ा किया, भजन गाए, हमने निवेदन किया कि भाई दिल्ली पंजाब वाले गए। तो आपको बड़ी सी चीज बता दूं, आज मनोविज्ञान का था, भारत की बालिकाएं, भारत के बालक, भारत की नारी, भारत के पुरुष अगर नाच सकते हैं तो सारी दुनिया को नचा भी सकते। अर्षी किसके आधार पर पूरा विश्व का नाम? अगर भारत के लोग नाचना जानते हैं तो समय पर वाण और सुदर्शन चलाना भी जानते हैं, इसलिए कमजोर नहीं। आप लोग नाचे लेकिन मैं जानता हूं कि आज मिलिट्री में बॉर्डर पर किस तरह से जो पंजाब के लोग दिल्ली के लोग नाच रहे थे, किस तरह से दुश्मनों को नचाते हैं वो भी मैं जानता हूं। नचा दो, मजा लेगी कोई देखे। यही मैं आपसे कहूंगा कि अपनी संस्कृति को समझिए। हम आपके साथ नाचेंगे, हम आपका बुरा नहीं सोचेंगे, लेकिन अगर इस संस्कृति को, इस देश को चाहे कोई अपना हो और चाहे कोई भी हो, अगर संस्कृति को नष्ट करना चाहेगा तो उसे हम करने नहीं। जब जटायु की बात आती है तो मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं अरे भारत का जटायु पंछी भी सीता नाम है संस्कृति, हमारी संस्कृति को हरण करके एक राक्षस ले जाना के मनोवैज्ञानिक विचार। एक राक्षस सीता धारण कर रहा है जानते लंकेश रावण, लेकिन मनोवैज्ञानिक क्या करते सीता नाम संस्कृति, हमारी संस्कृति को एक शैतान हरण करके ले जा रहा है और भारत की जमीन में जन्मा हुआ जटायु जाता है कि मेरे जीते जी तू नहीं ले जा सकता, भले पंख कट गए मर गया लेकिन जीते जी सीता की रक्षा में रहता। मनोवैज्ञानिक कहते हैं एक एक से कहता हमारी संस्कृति को अगर कोई नष्ट करना चाहता है तो मैं आपसे कहता हूं ये संस्कृति रहेगी तो भारत रहेगा, भारत रहेगा तो संस्कृति रहेगी और संस्कृति रहेगी तो अच्छे इंसान रहेंगे और अच्छे इंसान रहेंगे तो आने वाला कल भी कभी बुरा होने वाला नहीं। इसलिए यहां पर जितने वर्तमान हैं सभी अच्छे हैं, नर और नारी के रूप में, ऑफिस के रूप में, मंत्री के रूप में सभी अच्छे हैं, लेकिन इस वर्तमान की रक्षा हमारे और आपके हाथ में। लोग अक्सर आकर मेरे से पूछते कि स्वामी जी हम किधर जा रहे हैं, मैं कहता आप किधर जा रहे हैं, आप जीवित हो आप किधर जा रहे हैं, विज्ञान भी कहता है प्रिय आत्मन आने वाला कल आपके हाथ में नहीं, कल जब सुबह उठेंगे तो कल आग बने, इस क्षण यहां जितने बैठे कितनी शक्ति लेके बैठे, लेकिन शक्ति का जागरण वर्तमान में। एक मामूली बात, हम ताली देना चाहते हैं ताली इस फ्यूचर कोई आवाज नहीं, इस पास ये भूत है कोई आवाज नहीं, ये है वर्तमान, लेकिन वर्तमान में भी टक्कर होनी चाहिए। आज वर्तमान में जब टक्कर झेलोगे तो ऐसी आवाज आएगी कि सारी दुनिया सुनेगी। ये वर्तमान आपके हाथ में है, इसी वर्तमान को संभालने के लिए या गीता पर विषाद क्यों पैदा हुआ। अर्जुन जब कृष्ण के पास आया तो क्या विचार लेकर आया था, क्या सोच कर आया था, यही मैं आपसे आज लोग इतनी दूर से तकलीफ उठा के आते हैं मेरे आश्रम में या किसी आश्रम में। कई बार जगह ठीक से नहीं मिलती, हाईवे पर तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ उठा करके क्यों आते हैं, इसीलिए चाहे रविवार की बात हो, चाहे पूनम की बात हो, जन्म दिवस की बात हो या कार्यक्रम की बात हो, आप इसलिए आते हैं कि आपके विचारों में आश्रम के माध्यम से गुरु के माध्यम से ऐसी ऊर्जा आ जाए। मेरे प्रिय आत्मन मनोवैज्ञानिक विचार, अगर श्रद्धा और विश्वास के बल पर अग्नि के बीच में प्रहलाद बच सकता है, होलिका नाम है जगत का। बड़े प्यार से कहता हूं ये जगत का काम है जलाना, कोई बोल के जला रहा है, कोई दिखा के जला रहा है, कोई मटका के, होलिका का काम है जलाना, लेकिन प्रहलाद बच गया, हो होलिका का वरदान से तो नहीं हुआ, होलिका खत्म हो गई। अब मनोवैज्ञानिक विचार वेदांत क्या था, ये जगत हमें आपको जला रहा है, जलाता है, पहले भी आज भी वो जला है, लेकिन जिसे आत्मविश्वास है कुछ भी हो जाए, लेकिन भय है। भय नहीं, शंका नहीं, कुशंका नहीं, मन में कमजोरी नहीं। प्रहलाद का क्या आधार है? प्रहलाद भागा नहीं, लेकिन मन नहीं कमजोर हुआ। और हम देखते हैं कि होलिका खत्म हो, ये जगत हमें आपको जला रहा है, हमें आपको सता रहा है, लेकिन अपने गुरु मंत्र में, अपने गुरु में, अपने राम में, अपने भगवान में, अपने पीर में, अपने पैगंबर में भागो मत, ये जगत से मत भागो। लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर प्रहलाद की तरह निष्ठा जो होना हो जाए, लेकिन मैं राम नाम का त्याग नहीं करूं, मैं गुरु मंत्र का त्याग नहीं करूं, मैं अपनी संस्कृति का त्याग नहीं करूंगा, मैं अपने धर्म का त्याग नहीं करूंगा, तो याद रखिए आप धर्म पर हैं, आप में निष्ठा है, गुरु की भक्ति है, इस दुनिया को जलाने दो, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं एक दिन दुनिया राख बन जाएगी, आप बन जाओ, आप बचाओगे। अब एक प्रश्न हमारे आपके मन में उठता है, हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी भजन करता हूं, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यही आपको समझना। आप कहीं भी जाएंगे जहां पर गांधीव है, कर्म है, वहां प्रतिकूलताएं आई, कोई न कोई दुर्योधन बनेगा, कोई न कोई कौरव बनेगा, कोई न कोई लंकेश बनेगा, ये प्रकृति का नियम है। इसी बात को बड़े सरल ढंग से कहता, चाहे राम का जाप करो, वाहेगुरु का जाप करो, गुरुद्वारा जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, कहीं भी जाओ, समस्ती में कहा, कर्तव्य पालन में तकलीफें आएंगी। अर्जुन की तरह आपने मन में विषाद आएगा, विषाद मतलब क्या, कंफ्यूजन, करो कि ना करो, डॉक्टर बनो कि ना बनो, इंजीनियर बनो कि ना बनो, बच्चे मेरे पास आ, महाराज जी कुछ लोग कहते हैं मेडिकल में जाओ, कुछ लोग कहते हैं इंजीनियरिंग में जाओ, कुछ लोग कहते हैं कि वकालत पढ़ो, स्वामी जी आप क्या कहते हैं? मैंने कहा आपका मन क्या है, आप चारों तरफ से सुने लेकिन आपका मन क्या कहता है? और मैं थोड़ा आपको बता दूं, नाम इसलिए नहीं लेता ये व्यवहार के दृष्टि से इतना अच्छा नहीं माना। 58 नए संन्यास लेने के बाद काफी लोग संपर्क में आए, बहुत बच्चे मेरे संपर्क में आए, मैंने कहा आप क्या बनना चाहते? स्वामी जी प्रोफेसर, कलेक्टर, डीएसपी, जो भी, ठीक है थोड़ी परेशानियां आई हैं, लेकिन मैंने कहा मैं हूं मुकाबला का। तो हमारे कथनानुसार प्रेम से लोग प्रोफेसर के प्रिंसिपल भी हो गए, वाइस चांसलर भी हो गए, डीएसपी के आईजी भी बन गए, मंत्री भी बन गए। कठिनाइयां आई तो सरल भाषा में कहता हूं, आप मेरे पास आए तो सिर पर हाथ रखकर घर में ना बैठिए, अपने हाथ में कर्तव्य का गांडीव रखिए और परेशानी आने दो, दूर हो जाएगी। नहीं तो लोग आधे लोग क्या करते हैं, तो भाई संतों की बात, ये हाथ सिर पे ना रखो। मैं ज्योतिष वगैरह भी जानता हूँ थोड़ा बहुत, इसलिए कि आपको कोई मिसगाइड नहीं। आप लोग आते हैं कहते हैं स्वामी जी आप हाथ की रेखा देखते हैं, बच्चों से कहता हाथ की रेखा देखता नहीं, मैं हाथ की रेखा बनाता हूँ, मैं हाथ की रेखा बनाता हूँ। क्या दिखा रहे हैं, पानी का की हाथ है, ऐसे शादी का है, सब है। विचार किया मुझे विद्वान बनना है, बने आए और उस विरोध आया, आने दो पहाड़ आने दो तूफान, क्या करें। अरे तूफान तो आपको मजबूत बनाता है। एक डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमा ने पहले भाई सांसद थे विक्रम यूनिवर्सिटी, उनकी एक बात थी, मेरा बड़ा प्यार था कहते। एक बार मैंने माधुकाल में लेक्चर दिया तो उन्होंने कविता सुनाई थी, पूरी कविता तो नहीं याद है लेकिन बहुत सुनाए थे। आए तूफान, कविता नहीं याद है उसका बात, आए तूफान तू आया, मैंने तेरा मुकाबला किया, तभी दुनिया ने मेरी शक्ति का भी परिचय प्राप्त किया। तूने तो मेरी शक्ति का परिचय दुनिया को दिया, क्योंकि मैं अड़ा रहा और तू शांत हो गया और मैं आगे बढ़ गया। जा विचार की, किसी न किसी तरह सच्चे लोगों में एक बात आए, पलायनवादी नंबर, चलो नदी में पूर्ण हो गए ठीक है, तेरे इंतजार करो, लेकिन पूर्ण देख करके घर वापस ना आओ। पूर्ण कब होगा, पार कर लो, बहानेबाजी न कर। मनोविज्ञान क्या कहता है, ये जो लोग बहाना करते हैं बड़ी सुरक्षित झूठ है, पकड़ में नहीं आते, लेकिन झूठ। एक इसका उदाहरण दे दूं, आपका सहायक, आप ऑफिसर हैं, आपका सहायक आधे घंटे देखा है, सच तो यह है कि घर पर मेहमान आ गए, चाय पानी पिलाने में देर हो गई, लेकिन साथ नहीं मानेंगे, साथ गलत है, तो आपका सहायक क्या कहता है, सर रास्ते में मोटरसाइकिल पंचर हो गई, ये है तो झूठ लेकिन इतना सुरक्षित झूठ है कि साहब पकड़ नहीं सकते, बैठी के पंचर हो गई हो। तो आप अपने आप में बहाना मत ढूंढो, अपने आप को धोखा मत, मुझसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, कुछ नहीं। हर तरह से लोग बहुत आगे बढ़े, चाहे महल में जन्मे कि झोपड़ी में जन्मे, पुत्र के रूप में कि पुत्री के रूप में। आप मीरा का भजन गाते हो, मीरा के सामने कितनी तकलीफ, कबीर का भजन घर घर में है, कबीर का जीवन देखा, भगवान बुद्ध का देखा, आप फल चाहते हैं लेकिन उसकी जो प्रोसेस है विधि उसे नहीं ध्यान करते। हमारे फिलासफर भी करते, वी आर इंटरेस्टेड इन द जस्ट नॉट इन द प्रोसेस। आपने कैसे बगीचा बनाया लोग उसे नहीं देखते, लेकिन फल लगेगा तो कुछ लोग खरीदेंगे, कुछ तोड़ेंगे, कुछ चोरी भी करेंगे, लेकिन बगीचा आपने 5 साल में कैसे तैयार किया उसे लोग नहीं देते। आप अपने आप को तैयार करो, जहां भी हो जिस तरह, खास करके बच्चों को बता दो, आप पूरी रामायण पढ़े तो मेरे लिए भी, बच्चों के लिए, सबके लिए, रामायण सब को जपारा वैज्ञानिक मानते हैं संभव है, कल्पना, लेकिन कल्पना का आधार हमारे होना चाहिए। राम ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा कि मेरा भविष्य बताइए। गुरुदेव कहते हैं कि राम पुत्र राम कठिन से कठिन परिस्थिति में तू अपने कर्तव्य का पालन करेगा, बैठेगा नहीं, पलायनवादी नहीं बनेगा, पहले कर रहा हूं। राम मैंने तुझे हर तरह से इतना तैयार कर दिया कि कठिन से कठिन समय में कैसी भी विपरीत परिस्थिति होगी लेकिन राम तू पलायनवादी नहीं बनेगा, सिर पर हाथ रखकर बैठेगा नहीं, किसी को दोष भी नहीं देगा और अपने कर्तव्य का पालन करेगा। तू किसी को दोष नहीं देगा, बैठेगा नहीं, पलायनवादी नहीं बनेगा, कठिन से कठिन समय को स्वीकार करके आगे चलेगा। तो राम मैं तेरा भविष्य बताने वाला नहीं, क्योंकि जो कठिन से कठिन समय में भी चल रहा है उसके भविष्य को मुझे बताने की कोई जरूरत यही मैं आपसे कहता। आज सबको नारी के रूप में पुत्र पुत्री के रूप में तैयार करना चाहता कि विगत से विगत परिस्थिति आ जाए लेकिन आपका हाथ सिर पर नहीं, गांधी ऊपर रहे, कर्तव्य में रहे, आने दो परेशानियां और एक दिन दुनिया आपकी पूजा करेगी। क्योंकि मुझे मालूम है कि कठिन समय में जो नहीं हारा, रात अंधेरी में जो नहीं गिरा, तो सुख में दिन में कैसे गिरेगा, कैसे भटकेगा। आप कठिन समय में भटक न जाइए, अंधेरी रात में भटक पड़ते हैं क्या होगा, एक अंधेरी रात में भी आप आत्मबल से चलते। कहानी है, दिन में तो सूरज से चल रहे हो, चांद से चल रहे हो, रात में तारों से चल रहे हो, लेकिन कहानी है। अमावस की रात है, बादल छाए हैं, चांद तो है नहीं, तारे दिखाई भी नहीं पड़ते, फिर भी चलते हो। जैसे अंधेरी रात में आप आत्मबल से चलते हैं, ऐसे कठिन से कठिन समय में जो आत्मबल से चलेगा सूरज उसका स्वागत करेगा, सफलता स्वागत करेगी और रात बीत जाएगी, कठिन समय बीत जाएगा, वो आपके सामने नहीं रहेगा। तो संकल्प शक्ति का मतलब एक मेरे को कि हम एक अच्छा इंसान बना, लालचें भी आएंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन जहां अपना हक नहीं उसे नहीं लेना, जो चीज अपने ने उसे अपना नहीं बनाया, जिसके उसको दे देना। मन को इतना तो कल्टीवेट करो, इतना तो करा दो, यहां पर इतने लोग बैठे मैं आते थे सबको मैं एक एक को जानता हूं, सभी मेरे हैं, चाहे पंजाब चाहे दिल्ली चाहे बम्बई चाहे सब। इस समय यहां पर कोई दुखी नहीं है, सभी सुखी हो, सबके संतानें हैं, सब समृद्ध हो, मेरा एक परिवार है, लेकिन अब दुख की बात बताऊं कैसे आए दुख, तो पहले कहानी सुना दो फिर बताऊं। गुरु के पास कुछ चेले आए, अपना दुख बताने लगे, दुर्गा मेरी थैली में दुख डालो, अपना लिख लिख के डालो, लिख लिख के डालो। सब लोगों ने अपना दुख लिख लिख करके डाला। फिर गुरु जी ने कहा हमारे पास है ना जल्दी सैन डाकर सैनिक पटेल हैं, बदल है सब बैठे, अपने शिष्य का कि सबका दुख थैली में ले लो, फिर थैली में से सबका दुख निकालो और बराबर बराबर बांट दो। तो डॉक्टर सैनी ने सबका दुख बराबर बांटा तो लोग कहते हैं सैनी साहब मेरा पहले वाला ही दुख ही कहीं तो ज्यादा हो, ये दुनिया तो मेरे से ज्यादा दुखी है, हमेशा आपको लगता है। लेकिन दूसरों का दुख देखोगे तो लगेगा कुछ ऊपर कुछ भी नहीं। तो परमात्मा पर किसी पर दोष मत लगा, अब कठिन से कठिन समय में चलते रहो, आएगा सब कुछ। लेकिन मैं सफलता की बात कर रहा, अनुकूलता की बात नहीं कर रहा। अनुकूलता तो यह है मैं आपका गुरु, आपकी लड़की की शादी है तो कहते हैं गुरु महाराज जी 8 दिन पानी न बरसे बच्चा है, लड़की की शादी है। एक दूसरा चेला किसान आता है, महाराज जी पानी जल्दी बरसे नहीं फसल खराब हो जाए, गुरु जी क्या करें पानी बरसाएंगे नहीं बरसे। तो गुरु जी कहते हैं फोटो ले जा फोटो, चेला जो कर्म होता है। एक ये सब बड़ी मामूली बात है, इस पर अपने हाथ फल का श्रद्धा का तराजू बनता लो, ईश्वर जो कहता है ठीक है। सबकी अपनी अपनी मांग है, आपका कोई काम बिगड़ने वाला नहीं, लेकिन आप डर क्यों जाते हैं, भय क्यों है? मैं आपसे कहता हूं आप डॉक्टर बनोगे आप डर क्यों गए, आप इंजीनियर बनोगे क्यों डर गए। एक रशियन कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी, 5 बच्चों को नदी पार करना, और जो प्रथम पार करेगा उसे इनाम मिलेगा। एक चेला अपने गुरु के पास आया, कहते गुरु जी मुझे प्रथम इनाम लेना है, मुझे नदी पार करनी है। कहा बेटा गुरु का ध्यान कर, गुरु की बात सुन, दूसरे की नकारात्मक बातें सुनना नहीं, वो सफल हो जाए। कहानी है टॉल्स्टॉय की, कहानी है माय मास्टर करके, उसमें गुरु की बात आती है। तो सबने कहा अरे नदी में मगरमच्छ है, नदी गहरी है। तो लोग थोड़ी दूर गए और वापस आ गए, मेरा चेला पार कर गया। लोगों ने कहा भाई इसका शरीर भी दुबला पतला था, इसका शरीर पहलवान जैसा था, ऐसा था, ये लोग नदी नहीं पार किए, दुबला पतला क्यों पार किया। तो मनोवैज्ञानिक कहानी में कहा गया कि लोगों ने बोल बोल कर चारों का मन कमजोर किया था, उसने केवल गुरु की बात सुनी, मन मजबूत था तो शरीर में ताकत आई और पार हुआ। कहानी है तो दुनिया हमारे आपके मन को कमजोर करती है, बताता हूं कैसे करते। आपने गोल्ड मेडल लिया तो लोग क्या करते, अब गोल्ड मेडल वाले कौन से नौकरी में नहीं देखो ना, तो आप अमेरिका जाते कहते क्या करोगे डॉक्टर बन के, वहां तो मॉडल ही कर दे। मदद करने के बजाय लोग हताश और निराश जाना, मेरे प्रभु बड़े प्यार से कहा मैं किसी धर्म का खंडन नहीं करता, न किसी पूजा का खंडन करता, न मंदिर का, न मस्जिद का, गुरुद्वारे का, किसी का खंडन नहीं करता, मैं अपनी बात करता। अगर मेरा शिष्य किसी भी तरह किसी के सुनने से कहने से अगर कमजोर बन गया तो ये मनीषानंद का अपमान है, इसलिए कमजोर बन के मेरा अपमान कभी नहीं, जो होगा मैं देख लूंगा उसकी चिंता नहीं। मेरे पास सब कुछ सब हथियार है, मैं हाथ भी जोड़ना जानता हूँ, दिखाना भी जानता हूँ, और मैं लड़की भाई को लड़का हूँ, निशाना भी मेरा बहुत। मैं कराटे भी जानता हूँ, ऐसी ऐसी नजर जानता हूँ कि एक बार करूंगा तो 24 साल तक होने से नहीं पता हूँ ना, तो कहूँ गुरु जी सिखा दो, वही सिखाना जो आपके लिए जरूरी है। तो आप जिसे भी मानते हैं आप कमजोर करते हो, किसी के सुनने से, किसी के काम काम करने से, तो मेरी क्या हालत है, मेरा क्या होगा, जा विचार कर, बड़े प्यार से कर। आपने अपने गुरु की, जो भी आपके गुरु महावीर है, भगवान बुद्ध है, सब आप अपने गुरु की फोटो घर में रखे हैं तो सुबह जब फोटो देखे हंस के देखो कि हे गुरुदेव आज का काम अच्छी तरह करो, पहले मत सोचो हे गुरु जी काम होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं, नहीं नहीं क्यों बोलते आप, नहीं नहीं क्यों बोलते। गुरु की फोटो ऊपर टांग रखा और सिर ऊंचा करके नमस्ते बोलते हो तो शाम को से नीचा करके घर क्यों आते, जब गुरु के सामने से ऊंचा करके किए तो रास्ते में ऊंचा रखो और शाम को ऊंचा करके आओ नीचा करके ना। मैं तो मेरा अपमान होगा, मैं कहूंगा चेहरा सुबह गया और अभी है तो मेरा अपमान होगा मेरा, या विचार क्या कमी है, ठीक है काम नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कल होगा परसों होगा। मैं कहता हूं कि इतनी जल्दी बड़े काम नहीं होते, हो तो होगा। मैं आप सबको लेकर पावागढ़ पैदल जाना है तो एक दिन में तो पैदल नहीं पहुंचूंगा, 10 किलोमीटर रुकूंगा, सोऊंगा, फिर चलूंगा चलूंगा। तो कभी काम में अल्प विराम आ जाए या कभी थोड़ा रुक जाए तो बताऊं प्यारे बच्चों जो 20 साल के, जो 15 से 20 साल है, अरे पिक्चर में इंटरवल में पूरी भजिया खाते हो तो थोड़ा इंटरवल में घर में भजिया खाया करो, दूसरे दूसरे काम करो। अगर 2 दिन काम नहीं होता तो इंटरवल मान लो, और पिक्चर में इंटरवल में क्या करते हो आप, तो होना लेके बैठ जाते हो। तो काम अगर 2 दिन नहीं हुआ तो इंटरवल बढ़िया भजिया बना के खाओ, कहो जय गुरुदेव और देखो फिर काम किस तरह हो। एक बात बताओ, मैं अपनी ही बात करूं, आपका बेटा आपके सामने रोए तो अच्छा लगेगा, तो आप सब जो मेरे शिष्य मेरे बेटे हैं चाहे फोटो हो कैसे हो अगर आप रोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं रास्ता निकालूंगा उसकी चिंता नहीं कीजिए। तो संकल्प शक्ति की बात क्या, एक अच्छे विचार को आप पकड़े, आप किसके पास आए एक विचार लेकर कि मुझे कर्म करना ही तो करना है, फिर आप गांधी को रखते हो विचार ही, ये हमारा आपका विचार है साहब। आप अगर मेरे पास आए हैं, मैं कहता अपन नाम खाए सुबह शाम होगी अनुकूलता प्रतिकूलता, राम को देखनी पड़ी किसको देखनी पड़ी सबको, तो हमें आपको क्यों नहीं, मैं वादा नहीं करता, लेकिन मेरे प्यारे परिवार वालों एक वादा जबरदस्त करता कि कठिन से कठिन समय में मेरी फोटो के सामने आओ गुरु जी, इससे भी कठिन समय आ जाए लेकिन ना आपको छोड़ूंगा ना कर्म को छोड़ूंगा। देखो ये संकल्प नहीं है कि कोई मेरा चेला कहे गुरु जी बड़े प्यार से कह रहा चलो इसका उदाहरण समझ, आपके घर पर आया और आप गुरु जी को बहुत मानते हो, कहा हे गुरु जी आज चाय बनाने वाला नौकर नहीं आया तो कुछ ऐसी सिद्धि करो कि चाय की कप आ जाए। अरे वो आपके घर में चाय की कप सिद्धि से लाना था तो मैं रस्ते में पी लेता, आपसे कहने क्या जरूरत है कि चाय बनाओ, क्या जरूरत थी कहने के लिए भोजन बनाओ, ये समझना है। चाय बनेंगे बनाने वाला मिले, लेकिन ये कहना कि गुरु जी चाय बना के, गुरु जी चाय बना के पी ले आपको कहने क्या जरूरत। तो संकल्प शक्ति का अर्थ समझें, आप सब अच्छा बनना चाहते हैं, कोई गरीब नहीं बनना चाहता, राम महल में जन्मे तो भी भगवान हुए, अब किस जन्मे तो लेके भागना पड़ा भाव में, लेकिन वो भी भगवान ना, ये कुदरती है। भगवान मतलब प्रतिष्ठित, भगवान मतलब उच्च कोटि आदरणीय। हर बच्चा बेटा बेटी, हर नर और नारी परमात्मा की तरफ से शक्ति लेकर आए। आप ऊंचा बनना चाहते हैं और आप ऊंचे बनने में गुरु मदद करते हैं। नदी में तैरना तो गुरु सिखाएगा, अब कोई डूबना चाहता है तो गुरु की क्या जरूरत है गुरु की? तो आप लोग इतनी तकलीफ उठाकर जन्मदिन पर गुरु पूनम पर आते हैं, तो आज इस गुरु पूनम पर एक ही विचार आपको दूंगा। हर पुत्र हर पुत्री, हर बालक हर बालिका जीवन में कुछ बनना चाहता है, अपना इतिहास स्वयं बनाओ, इतिहास से प्रेरणा लो। दूसरों से हमें प्रेरणा लेनी है, नकल नहीं करनी। अमेरिका से प्रेरणा लो, कनाडा से लो, जर्मनी से लो, लो, लेकिन अपना जीवन जियो, अपनी संस्कृति से जियो। हमें दूसरों से प्रेरणा लेनी है, हमें किसी की नकल नहीं करनी, क्योंकि विज्ञान भी कहता है जब हम किसी की नकल करते हैं तो हमारी मौत हो जाती, इमिटेशन डेथ। आप किसी की नकल ना करें, लेकिन जहां से अच्छी प्रेरणा मिले और लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़े। जो आप धारण करते हैं वो प्राप्त करके रहेंगे, लेकिन मन में यही विचार आए कि हमें कुछ जीवन में होना। और मैंने कहा, मैंने अपने जीवन में देखा लोग कहां से कहां पहुंच गए। एक रास्ते का पत्थर भी प्रियात्मन कुछ बताना चाहता, एक रास्ते का पत्थर भी अच्छे शिल्पकार के हाथ में आता है, मूर्ति बन जाता है, उसकी पूजा होती है। आप सब एक अच्छे गुरु के पास है, अगर मूर्ति नहीं बन पाए या तो मैं अच्छा गुरु नहीं है या तो आप बनना नहीं चाहते, दोनों में से किसी को कमी है। लेकिन बड़ी नम्रता से कहता हूं, शिल्पकार में गुरु में कमी नहीं है, लेकिन आप ठीक से नहीं चलोगे नहीं मानोगे तो मैं क्या जो सुनाता हूं कहता हूं, हमेशा कहता चाहे कुछ हो जाए लेकिन आप अपना काम मुझे दे दो। कोई कुछ आपको कहता है गुरु को लगता है मैं हिसाब किताब कर लूंगा, लेकिन आप किसी के सामने पत्थर लकड़ी उठा के जवाब मत दो। आप उपंद रखो, गुरु का रहा मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन आपसे सहन नहीं होता, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, आपको लगता है कि नहीं कुछ करना चाहिए, उसी में गड़बड़ी हो जाती। तो संकल्प शक्ति का जो विषय रखा गया आप सबसे विचार करके, यही तूफान आने दो, पहाड़ आने दो, प्रकृति प्रतिकूल होने दो, लेकिन जो अच्छा कर्म है, अच्छा सुनना, अच्छा देखना, अच्छा बोलना, हाथ अच्छा कर्म करना, अच्छी जगह जाना, चाहे कुछ हो जाए। मैं भगवान का नाम लेते हुए, अपने गुरु का स्मरण करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। और आपसे कहता हूं, परेशानियां आएंगी, लेकिन यह भी कहता हूं परेशानियों में से आपको रास्ता मिलेगा, इसलिए बीच रास्ते में सीढ़ी पर बैठने की जरूरत नहीं, थोड़ा आराम करो। हजार सीढ़ियां चढ़ना है तो 200 सीढ़ी पर आराम करो। मैं पूछूं क्यों बैठे हो बेटे, कहा गुरु जी आराम करके कल 200 सीढ़ी चढ़ना है, थका हुआ नहीं, ये मत कहना कि मैं थक गया, मैं आपसे कहता थके नहीं हो, आराम के लिए बैठे हो, थकावट नाम की कोई चीज ही नहीं। आगे बढ़ो, और मन से थक जाओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आज का प्रोग्राम हमारे मास्टर कमल सिंह कहे थोड़ा पानी बरसा, देवता लोग खुश रहे इसलिए पानी बरसा, और ये पानी में थोड़े आपके धीरज के मेरी भी तो परीक्षा होगी, तो मैं उठ के भागा दूंगा। आप लोग कोई कागज है तो मास्टर कमल सिंह देवता लोग बड़े खुश रहे, हमेशा खुश रहे। आप लोग आए, बच्चों ने किया, आपने किया, सबने किया। ये प्रबंध है इस बार बिहारी भाई जेसी पटेल है, अमर सिंह है, वीर सिंह है, हमारे जैनब सिंह के जसवाल साहब है, आप सबने किया, सबने मिलकर किया। और जिसने प्रोग्राम किया वो बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े कोटि के हैं, उन्होंने कभी कथा में सुन लिया है कि भाई भगवान के नाम से जो गुप्त किया जाता है उसमें शक्ति है। तो कहे स्वामी जी कथाओं में आता है कि नाम देने से शक्ति कम हो जाती है, मैं विज्ञान भी करता है। तो मैं आपसे एक कार्यक्रम के पीछे जिसकी शक्ति है वो नाम नहीं बताना चाहते, लेकिन मेरे प्रिय शिष्य हैं, हर तरह से सुखी हैं, संपन्न हैं, बड़े उच्च कोटि के हैं, परिवार हैं। और मैं भी आपसे कहूंगा कि भगवान किसने जब सुदामा को दिया तो बता के नहीं दिया। तो आज वैज्ञानिक भी कहते हैं आप कोई भी अच्छा काम करो, गुप्त करो, उसमें ताकत ज्यादा आती है। एक छोटी सी बात बता दूं आपको, बड़ी छोटी सी बात, आप घर में एकांत में सूखा ढोकला खाते हो तो ताकत आती है, और होटल में 500 रुपए एक दिन खाते हो 2 दिन के बाद। तो ये है उनकी इच्छा है कि नाम नहीं जाहिर करो तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना है कि अगर नाम जाहिर करता तो उनका पुण्य आपको मिलता, अब नाम नहीं जाहिर कर रहा हूं तो आपका पुण्य उनको मिलेगा। तो ये कार्यक्रम विशेष व्यक्ति के द्वारा हुआ, मदद में सभी हमारे चाचा जी भी रहे, हमारे आसपास वाले भी रहे, सभी आए, मध्यकाल पंजाब है, दिल्ली है, और दिल्ली में जहाँ रहता था मैंने कई बार आपसे नाम लिया, आज भी बैठे हैं दिल्ली में मुझे ले आने वाले, आज उनकी भाग्य नवाब पटौदी, नाम सुना ना, पटौदी में रहते हैं। कल भगवान दास ने कहा स्वामी जी आपको याद है, अरे मैंने कहा नवाब पटौदी नहीं याद आएंगे जहाँ से आप दिल्ली लाए थे, रामदास लाए थे। तो देखिए नवाब पटौदी से हमें आपने तो दिल्ली ला के नवाब बना दिया, रामदास जी और भगवान दास जी, फिर आप लोग मिले, सब आए जिनके घरों में रहा, सब के लिए रहा, सब सुखी हैं। पंजाब उठाने के बाद कम सिंह ने किया, पंजाब की बात किया, दिल्ली भी है, बम्बई भी है, हमारा सूरत है, अहमदाबाद भी है, राजकोट भी है, भरूच भी है, कालेश्वर है, बैंगलोर है, देखा जाए तो अमरोली भी है, सूरत है, सिवनी भी है, सभी है, सभी तरह मंगरौली है, सभी है, सभी मेरा पूरा परिवार है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आप सबको हर तरह से शक्ति दे, समृद्ध बने। हरे ओम।